ఓం శాంతి. ఓం శాంతి. సబ్ జగే హువే హై, జో ఎక్దమ్ పీచే బైఠే హై, సారా హాల్ ఖాళీ పడా హై, ఆగే ఆ సక్తే హై, సారా ఆప్కా హీ హై, పూరా హాల్ ఆప్కా హై. వైసే భీ అభీ ఆధా హో గయా నా హాల్ తో. शाबाश, आ जाओ आ जाओ. एकदम पीछे बैठते ऐसा लगता है रूठ के बैठे हैं. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच. ओके, ओके, सेटल्ड. आपके हाथ में किताब हो, बैग हो, पर्स हो, थोड़ा बाजू में रख देंगे, हल्का होके बैठेंगे. मोबाइल तो बिल्कुल हाथ में नहीं लेंगे, एक घंटे तक तो नहीं लेंगे. ठीक है, लंबा श्वास ले, डीप ब्रेथ. बेशक आंखें बंद करें और सवेरे से लेकर अभी तक मैं आत्मा, राजा कैसा रहा, मुझे आत्मा का मन क्या सोचता रहा, मेरे कर्म इंद्रियां क्या ऐसा कुछ गड़बड़ तो नहीं किया जो मैं ना चाहूं. ऐसा कर्म तो नहीं किया जो मैं राजा ना चाहूं. ऐसा बोल तो नहीं बोला. चेक करें सिर्फ आज का दिन, सवेरे से लेकर अब तक क्या सुना, क्या सोचा, क्या महसूस किया, मेरे कर्म इंद्रिया मुझे सुख दिया, ये मुझे धोखा दिया. अपने अंदर के राज्य को देखें, और मैं राजा मन बुद्धि संस्कार जो मेरे मंत्री है, कर्मेंद्रिया मेरे मेरी प्रजा है. क्या मेरे अपनी प्रजा और मंत्रिमंडल से खुश हूं? और वे मेरे से खुश है? अरे खुश है तो मेरा राज्य खुशहाल है. चेक करें लंबा श्वास ले, डीप ब्रेथ, ओपन योर आईज, आंखें खोले, सो नहीं जाना, आंखें खोले, अभी आंखें खोल सकते हैं तो अपने अपने राज्य को देखा कैसा है राज्य अपना। आज भी प्यारे बाबा ने अपने आप को स्वराज्य तिलक लगाने के बाद कही कही ना, आज की मुरली सुनी ना सबने, सुनी हाँ या ना, थैंक यू। अब स्वराज्य तिलक लगाना मना खुशहाल राज्य, जब राजा गद्दी पर बैठेगा तब तो तिलक लगाएंगे। अब राजा गद्दी पर बैठा ही नहीं तो उसको तिलक थोड़ा ही देंगे, ताज थोड़ा ही पहनाएंगे। कई मुरलियों में बाबा हम बच्चों को बड़े लाड से, बड़े प्यार से कहते हैं, आप सभी मेरे राजा बच्चे हो। कैसे बच्चे हम बाबा के? स्वयं परमात्मा भगवान कहता है तुम मेरे राजा बच्चे हो, मेरे दिल तख्त पर आप बैठने वाले हो। क्या जोरदार है, ऐसा मेरे अपने खुद के भी बाप नहीं बोलता है। हाँ बोलते हैं, मेरे पिता ने तो नहीं बोला, चलो आपके भी पिता शायद न बोले होंगे। इतना लाड कोई बाप अपने बच्चों को लौकिक में बहुत बहुत करके ऐसे शब्द बोल भी दिए होंगे, पर कभी कभी गुस्सा भी करते हैं। लेकिन ये बाबा कभी गुस्सा करता है? नाराज होते हैं हमसे? हाँ? कभी हमको नफरत के भाव से, नफरत के नजर से देखते हैं बाबा? तो कितना मीठा बाबा है, कितना प्यारा बाबा है, दिल पर हाथ रख के देखो कितना हम भाग्यवान हैं। हाँ? महसूस कर रहे भगवान को तो हम ढूंढ नहीं पाए, पर वो हमको ढूंढे। सारी दुनिया भगवान को ढूंढते हैं, और भगवान ने क्या किया, भगवान ने क्या किया, हम सबको ढूंढते रहे। कहाँ कहाँ से ढूंढा बाबा ने, किस किस गली में ढूंढ ढूंढ करके एक 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 को निकाला। हाँ? तो हम कितने प्रेशियस है, कितने अनमोल हैं हम। भले दुनिया वाले अपने घर के सदस्य हमको इतना वैल्यू नहीं देते होंगे, लेकिन भगवान हमको कितना मान देते, कितना सम्मान देते देते हैं ना। हाँ? तो यदि ये एक बात भी रोज याद करेंगे, कभी हम दुखी नहीं होंगे, खुश होंगे। अरे छोड़ो, आपको हमसे हमारी वैल्यू नहीं है तो कोई बात नहीं, हमको स्वयं भगवान पूछता है, स्वयं भगवान हमारा वैल्यू करता है। ठीक है, आत्मा राजा है, और इसलिए बाबा कहते हैं कि आप मेरे राजा बच्चे हो। न केवल अब राजा है, हम भविष्य में भी राजा बनेंगे। देखो दुनिया में ऐसे कोई राजा नहीं बना है, सिकंदर भी नहीं ऐसा राजा है। एक तो हम अभी आत्मा राजा है, परमात्मा के दिल तख्त पर हम बैठने वाले राजा है, भविष्य में भी राजा है ना। तीन तीन राजा। हाँ? खुद पर भी राज्य है और भगवान के दिल तख्त पर भी हैं, तो भविष्य में भी हम सत्युग में भी महाराजा बनेंगे, महारानी बनेंगे। कौन महारानी बनेंगे? महारानी कौन बनने वाले, हिंदी समझ रहे ना, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओके, महारानी कौन बनेंगे? महाराजा कौन बनेंगे? क्यों भाई महारानी नहीं बनेंगे? बहुत ज्यादा सोना मिलेगा, कान में, नाक में, गले में, हाथ में, सब सोना पहन सकते हैं। महारानी बनो। भाई नहीं बनने वाले महारानी, और महाराजा बहने नहीं बनेंगी, बहनों में कौन महाराजा बनेंगे? ओके, भाइयों में महारानी कौन बनेंगे? ओके, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। आत्मा राजा बने, रानी बने, देहाभिमान है तो हमको लगेगा अच्छा मुझे साड़ी पहनना पड़ेगा, हाँ तो ये तो देहाभिमान है जी। तो पहनेंगे तब जब जाएंगे ना, तो जाने के लिए आप तो कुछ करना पड़े, तो अब क्या करना पड़े? अब बाबा कहते हैं, बच्चे आप तो हो ही राजा, आप तो हो ही राजा। अब राजा क्या करता है? इसलिए शिव बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं, हैं जी, प्रजा योग या हठ योग या कुंडलिनी योग, पता नहीं दुनिया भर के योग है, बाबा ऐसा योग नहीं सिखाते, और ये योग कोई नहीं दुनिया में सिखा सकता। तो बाबा हमको कौन सा योग सिखाता है? राजाओं का राजा बनने वाला योग, राजाओं के भी राजा, जो राजा उन राजाओं के सामने सिर झुकाए, ऐसा राजा हम बनने वाले हैं। तो ऐसा राजा बनने का योग हम सीखते हैं। तो अब हमारा, अब भी हम राजा है, तो क्या करें जो हम राजा बन जाए? और कई बार हमको लगता है कि हम इतने 2500 साल हम देह में रहे, प्रजा तो क्या दासों के दास बन के रहे, रंक बने रहे, तब कैसे राजा बनेंगे? हाँ जी, है ना मुश्किल बात ना। इंद्रियों के भी अधीन रहे, विकारों के अधीन रहे, तो हम तो मिट्टी के पाताल में रहे, तो अचानक कहो आसमान में जाओ, ये क्या न्याय है भाई? तो कई बाबा के बच्चे समझते बाबा को क्या पता, उनको तो शरीर ही नहीं है, बहुत आसान है ये सब बोलना। वो एक बार शरीर में आके देखे, पता चले गर्भ में आए, जन्म ले तो पता चले, उनको तो शरीर ही नहीं है, हम तो कितने जन्म ले लेके यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, तो अब हमको कैसा करेंगे? अब जैसे 2500 साल हमको रंक बनने का, अधीन बनने का संस्कार है, तो बाबा तो दयालु है ना, बाबा कृपालु है ना, बाबा को पता है कि बच्चे कितने मुश्किल से गुजर रहे हैं, तो बाबा ऐसा कोई हट, कोई मुश्किल का मुश्किल की विधि तो नहीं बताएगा ना। तो बाबा कहते हैं कि बहुत इजी है, बहुत इजी है। जैसे 2500 साल हम अधीन बने हुए हैं, तो 2500 साल राजा भी तो बने ना, कि नहीं बने, बने कि नहीं बने? बने, अब जाग रहे हैं ना। ओके 2500 साल हम राजा भी बने, तो बाबा कहते सिर्फ वो ही तो याद करना, हम ये याद क्यों करना जो रंक बने थे, वो तो बन गए, हो गया, अब तुरंत क्या बनना? अभी रात हो गई, ऐसे दुनिया में कहते ना रात गई, हाँ अब तो रात पूरा ही होने वाला है ना, पूरा होने वाला, अब दिन आने वाला, तो हमको रात की बात याद करना है या दिन की बात याद करना है? हाँ, तो दिन तो राजा है, रात में हम रंक थे, तो रात तो पूरे होने वाले, अब तो दिन होने वाला है ना, तुम तो राजा थे दिन में, तो पूरा दिन, पूरा सत्युग त्रेता दिन में, ब्रह्मा का दिन, ब्राह्मणों का दिन में हम तो राजा थे, महारानी थे, महाराजा थे। तो बाबा कहते सिर्फ वो याद कर लो, ये जो राज्य है, द पावर ऑफ सोविनिटी, जिसको सेल्फ मास्टरी कहते हैं, स्वयं पर अधिकार, वो हम 2500 साल हमारे पास था। तो हम उसको याद करना है, योग मना याद, योग मन संबंध, बाबा के साथ हम संबंध जोड़ते जाएंगे, जितना घनिष्ठ संबंध होगा उतना वो याद आएगी कि हम क्या थे। वो सारा संस्कार जो हमारे आत्मा में ऑलरेडी है वो इमर्ज होगा। बस यही पुरुषार्थ है, यही योग है, हैं जी। अब ये संगम युग में राजा है, राजा कौन है, कौन राजा है? आप में से किसी का नाम राजा है? वैसे लौकिक का नाम है राजा, ओ किसी का नहीं। अच्छा, आप में से है कोई अपने घर में किसी को राजा बुलाते हो? किस किस को राजा बुलाते हैं घर में? हाँ, कोई नहीं, हाथ उठाओ। राजा राजा बुला, जब आप बच्चे थे तब बुलाते थे? ओहो, चलिए। तो अब मैं आत्मा राजा हूं, ठीक है। अब ये आत्मा राजा को, इस आत्मा के राजा के राज्य में कितने लोग हैं, कितनों के ऊपर मुझे आत्मा को राज्य करना है, क्या क्या है बताइए। आत्मा के राज्य में कौन कौन है जी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मन बुद्धि संस्कार और कर्मेंद्रिया। अच्छा, ये मन बुद्धि संस्कार कौन है? आत्मा के आत्मा तो राजा है, तो मन बुद्धि संस्कार क्या है? अभी आपने गीत सुना ना, हाँ, मन बुद्धि संस्कार आत्मा के मंत्रिमंडल है। देखो, एक राजा होता है और उसके बाद मंत्रिमंडल होते हैं, ठीक है, और उसके बाद कर्म करने वाले, उनके मंत्रियों के काम को एग्जीक्यूट करने वाले मंत्री कर्मचारी होते हैं, और उसके बाद दास दासियां होते हैं, ठीक है। अब हमारे राज्य में भी ये तीनों ही हैं। मैं आत्मा राजा हूं और मुझे आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार ये मंत्रिमंडल है। अभी स्व राज्य अधिकारी, ये तीन शब्द है, स्व राज्य अधिकारी, तीन शब्द। अच्छा, स्व में मैं आत्मा, स्वयं, स्वयं में क्या क्या है? ये शरीर कर्म इंद्रियों के पास बाद में आते हैं, अब अपने भीतर देखते हैं हमारे अंदर क्या क्या है। मन बुद्धि संस्कार बस इतना ही है, और भी कुछ है जी? और भी कुछ है भाई, बताए और क्या है? सॉरी, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ध्यान से सुनेंगे। सोचो सोचो, क्या है मन बुद्धि के अलावा और क्या है? सोचो, मन बुद्धि संस्कार स्वभाव, हमारे मूड्स, मूड चेंज होता है, मूड चेंज होता है, हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, भावनाएं अंदर के, हमारे वृत्ति, मनोवृत्ति, एक है मन, एक है मनोवृत्ति, एक है मन, एक है चित्त। ये वृत्ति और चित्त जो है सूक्ष्म चीज है, मन से भी सूक्ष्म है। कई बार मन में बात नहीं होती है, लेकिन ये चित्त में बात होती है, हमारी वृत्ति में बात होती है, तो कभी न कभी वो मन में उभर के आ जाती है, हमारे कर्म में भी आ जाती है। हमको लगता है हमने सोचा नहीं था, ये कहां से आ गया। हाँ जी, वो वृत्ति में, चित्त में है, ठीक है। और हमारे मन के अंदर बहुत सारे इंप्रेशंस है, यानी बहुत सारे चित्र है। हमने कई लोगों के प्रति कई चित्र बना के रखा हुआ है, ये ऐसा व्यक्ति है, ये ऐसा व्यक्ति है। तो व्यक्तियों के बारे में हमारे मन में एक प्रकार के चित्र है, जिसको विजन कहते हैं। तो ये सारा सब कुछ बहुत अंदर अंदर है, बाहर से, यानी मेनली हम मन बुद्धि संस्कार कहते हैं, लेकिन मन बुद्धि संस्कार के पीछे ये सारे हैं जो काम करते हैं। इसलिए कई शास्त्रों में लिखा है राजयोग चित्त वृत्ति का निरोध करता है। मन बुद्धि संस्कार की बात नहीं कही है, चित्त और वृत्ति को साफ यानी शुद्ध बनाता है, ये ऐसा राजयोग है। और सिर्फ राजयोग से चित्त और वृत्ति साफ हो सकते हैं। हाँ जी, अच्छा, ये हैं हमारे मंत्रिमंडल, ठीक है। अभी ये सूक्ष्म है, अभी स्थूल में आएंगे तो स्थूल में कर्म इंद्रियां हैं, और कर्म इंद्रियों में मुख्य आंख, कान, नाक, पंच, जिसको फाइव सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। अच्छा, ये मंत्रिमंडल को समाचार कौन देता है, किस द्वारा समाचार पहुंचता है? ये कर्मचारियों के द्वारा। जैसे राज्य में गुड़ाचार होते थे ना, सीआईडीज होते थे, कहाँ कहाँ छुप छुप के भी वो लोग यहाँ का समाचार सुन के और राजा को, मंत्री को बोलते हैं, मंत्री राजा को बोलता, राजा गुस्से में आ जाता, वो युद्ध छेड़ दे, ये सब होता था ना। तो ये सारा गड़बड़ कौन करता? ये कर्मचारी। हमको मालूम है ये सुनना नहीं चाहिए, राजा बोलते हैं नहीं सुनो, पर ये चुपके से सुन लेती है, चुपके से देख लेती है, बोलते हैं हमको ये बोलना नहीं, बोलना नहीं, पर हम बोलते हैं। मुख का दो काम है ना, एक बोलने का और एक खाने का। जब तक हमको वो चीज ना मिले, यहां तो योग में भी वही घूमता है, पूरणपोली घूमता है, पूरणपोली घूमता है, पूरणपोली बोलते ना, हाँ, वो घूमता रहता है। शिव बाबा नहीं दिखता है, हम कितना भी बोलो सूर्य, चांद, सितारा, शिव बाबा, शांति सागर, हमको बीच बीच में पूरणपोली दिखाई देता है, बाबा थोड़ा ही दिखा नहीं क्योंकि वो इच्छा है ना खाने का। तो ये जीव, ये बाबा हमेशा मुरलियों में दो चीजों का जिक्र जरूर करते हैं। ये सबसे बड़ा धोखेबाज जो कर्मेंद्रिया है, कर्मेंद्रियों में, वो है आंख। आंख जो है ना, शरीर जो दिखता है वही देखता है ये आंख बेचारा। और बाबा कहते जो कुछ भी इन आंखों से दिखता है सब कुछ विनाश होने वाला। बाबा कहते सब मरे पड़े हैं, मुर्दे हैं, तो मुर्दे को देख के कोई खुश तो नहीं होगा ना, है जी। अच्छा, बाबा कहते हैं हम इन आंखों से हम ये शरीर को देखते हैं, और शरीर क्या है, ये स्किन है ना, जिसमें हमको रूप दिखाई देगा, रंग दिखाई देगा। अच्छा, ये आंख जो है घड़ी घड़ी मन मंत्री को कहता है, अरे ये देखो बहुत गोरा गोरा है, इसका रंग बहुत अच्छा, इसका रूप, इसका नाक नक्शा, क्या आंखें हैं, अरे क्या साड़ी पहनी है, इनका वॉच देखो। तो वस्तु और शरीर के आकर्षण बार बार मन को देता है, और मन इस आकर्षण में डूबता है, और जब मन बार बार आकर्षण में डूबता है तो बेचारा राजा का क्या हाल होगा। राजा भी कहते चलो भैया तुम भी चलो, हाँ। तो राजा जो है वो मंत्रिमंडल के फोर्स में आ जाता है, और यहां तक भी कभी कभी एक कर्मचारी के भी वश में आ जाता है। अच्छा, मंत्रिमंडल हुए, कर्मचारी हुए, अब तीसरा लेवल है हमारे सर्वेंट्स, जिसको बाबा कहते दासी, वह है प्रकृति, पांच तत्व। पांच तत्व जो है वो हमारे दासी है। बाबा कहते सत्युग में ये पांच तत्व आपके आपके दासी होंगे, और आपको वो सहयोग करेंगे, आपको वो ऐसा कोई गलत काम नहीं करेगा, प्रकृति से ऐसे कोई गलत काम नहीं होगी जिससे आत्मा राजा को दुखी आत्मा राजा दुखी हो, आत्मा राजा को दुख पहुंचे, तो इतना वो एकदम डिसिप्लिन्ड होंगे। अब इतना सब कुछ हमारा राज्य में है, तो इन राज्य को संभालने वाला कौन, पंच तत्व को, पंच इंद्रियों को, मन बुद्धि संस्कार और स्वभाव, सब इन सब को संभालने वाला राज्य, इसके ऊपर राज्य करने वाला कौन, कौन कौन आत्मा, कौन आत्मा, ऐसा नहीं वो आत्मा, मैं आत्मा, ठीक है। अब क्यों नहीं हो रहा, अभी तक जो बोला हमको मालूम है ये सब, पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि एब्सोल्यूट कंट्रोल, एब्स राज्य, राजा कहें और वो चले, वो हो जाए, जैसा कोई राजा ऑर्डर देता है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑर्डर करता है और राज्य में लागू तो होगा ना। तो मैं आत्मा चिल्ला चिल्ला के बोल रही भाई, तो गुस्सा ना कर, ओ मन मन तो सुनता ही नहीं है, मन सुनता ही नहीं है, आंखें भी नहीं सुनते, वो भी ऐसा बड़ा बड़ा हो जाता है, लाल लाल हो जाता है, मुख भी नहीं सुनता है, वो बड़बड़ बड़बड़ बोलना शुरू कर देता है, डांटना शुरू कर देता है, हाथ भी नहीं रुकते हैं, वो सामान इधर उधर फेंकना भी शुरू कर देता है, अरे ये तो बहुत बड़ा, सिर से लेकर पैर तक गुस्से में सारे कर्म इंद्रिया शुरू हो जाते हैं। अब राजा का हाल देखो क्या है, ऐसा होता है ना, होता है कि नहीं होता है, हमको मालूम है इसको देखना नहीं, ईर्ष्या नहीं करना, और इसके पास दो दो गाड़ियां हैं, और इसके पास देखो कितना अच्छा बैज लगाया, इसके पेन देखो कितना अच्छा है, इसका पर्स देखो कितना अच्छा है, इसके जूते देखो, अरे छोटी छोटी वस्तुओं के ऊपर भी हमारा हम आकर्षित प्रलोभन में आ जाते हैं। एक बात कहूं, किसी को बोलना नहीं, ठीक है, बात यह है कई बार हमको लोगों से इतना मोह नहीं होता, वस्तुओं से बहुत मोह होता है, चीजों के पीछे बहुत मन घूमता है, हम उस वस्तु के लिए कुछ भी हम छोड़ने को भी तैयार हो जाते हैं, पर वो चीज चाहिए। कई बार योग में बैठे बैठे कितने दुकान घूम के आ गए होंगे, हाँ जी, कितनी दुकान का चक्कर लगा के आ गए होंगे कि उस दुकान में हमने वो देखा था, वो देखा था, वो देखा था। तो ये वस्तुओं के आकर्षण बहुत है, बाबा कहते हैं बाबा के सामने हम बैठे हैं, योग लगाते हैं, 21 जन्मों का वर्षा हमें प्राप्त करना है और ये छोटे छोटे वस्तुओं के पीछे मन घूमता है तो कहाँ मन मनाभव होगा? कहाँ, आपको बुरा तो नहीं लग रहा हा? अच्छा, कहाँ 63 जन्मों के विकर्म जो है, कर्म के हमारे जो विकर्म के संस्कार बन गए हैं, उसको कैसे साफ करेंगे? हम अपने मन वृत्ति को साफ कैसे करेंगे? हम अभी तक चीजों के पीछे पड़े हुए हैं, उसकी इच्छा हमसे दूरी नहीं हो रहे। कभी कभी ये तो छोड़ो, कुछ 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 ऐसे भी हैं अपने नाम के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने सम्मान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मान नाम शान चाहिए। बाबा कहते हैं भाई एक दिन तो सबको जाना है, जितना भी मान हो कि जितना भी हमने कुछ है सब छोड़ के जाना है। एक चीज है अपने मन आत्मा राजा को इतना शक्तिशाली बना दें कि इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। ये सारी जो चीजें जिसके पीछे मन घूमता है वह खुद ब खुद आपके पीछे घूमना शुरू हो जाए। राजा आत्मा में इतना ताकत है। ठीक है, अभी क्यों ये कंट्रोल क्यों न हो रहा? अच्छा, कर्म इंद्रियों को और मन बुद्धि संस्कार का ये राज्य है, इसके ऊपर अधिकार रखने के लिए दो चीजें जरूरत है, दो बातें चाहिए, जिस जो बाबा कई बार मूल्यों में बताया हुआ है। एक है कंट्रोल करने की शक्ति, जिसको बाबा कंट्रोलिंग पावर कहते हैं, और दूसरी बात है रूलिंग पावर। अब कंट्रोल किसको करे, रूल किसको करे? मन बुद्धि और संस्कार के ऊपर अधिकार जमाने के लिए हमें कंट्रोलिंग पावर की जरूरत होती है। कर्म इंद्रियों को चलाने के लिए हमें रूलिंग पावर की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अभी कंट्रोल क्या है, कंट्रोल किसको कहते हैं, कंट्रोल किसको कहते हैं? अब कंट्रोल करना कितना मुश्किल है, नहीं? देखो, हमेशा हम कंट्रोल को एक अलग प्रकार से समझते हैं। कंट्रोल का मतलब ये नहीं उसको दबा के रखना, ये बुरी बात है। हमें मन को दबा के नहीं रखना, मन बुद्धि संस्कार को कदापि दबा के नहीं रखना। आप दबा के रखोगे जो थोड़ा सा हल्का होगा, वो दबाव रिलीज होगा, वो बाउंस होता है। जैसे बॉल को या कोई स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग, उसको आप दबा के रखोगे, एक्सक्यूज मी, वो दबा रहेगा। जैसे हाथ छोड़ा तो क्या होता है, वो स्प्रिंग बाउंस होता है। कंट्रोल का मतलब दबाना नहीं, नंबर वन। कंट्रोल का मतलब स्टॉप करना नहीं, स्टॉप करना भी कंट्रोल नहीं है। मन को स्टॉप कर दो, नहीं व्यर्थ, इसको स्टॉप कर दो, उसको स्टॉप करना नहीं है, न कंट्रोल करना है, यानी न दबाना है। अब कंट्रोल का मतलब क्या है? कंट्रोल का मतलब कोई चीज है हमारे पास, उसका सही इस्तेमाल, उसका सही उपयोग को कंट्रोल कहते हैं। इसको अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर शब्द है, जैसे मान लीजिए हम सबके घर में फैन है ना, फैन, पंखा, पंखा, पंखे को चलाने के लिए एक वो, हाँ, उसको क्या कहते हैं, रेगुलेटिंग, उसको कंट्रोलिंग नहीं कहते हैं। यानी जितना चाहे उतना हम स्लो फास्ट कर सकते हैं। तो मन को भी हमको स्टॉप नहीं करना, इसको रेगुलेट करना। और दूसरा शब्द है डिसिप्लिनिंग, मन को डिसिप्लिन करना, एक व्यवस्थित सुचारू रूप से उसको चलाना है, उसको रोकना नहीं है। रोकने का नाम कंट्रोल नहीं है, जो कई बार बाबा ने हमको बताया हुआ है कि बच्चे आप अपना मन को जहां चाहे, जितना देर चाहे, जिस स्थिति में चाहे, जब चाहे, आप उतना देर उस समय उस स्थिति में अपने मन को टिका सको, इसको कहते हैं कंट्रोलिंग। हमेशा मन को हमें ऐसा दिशा में, मुझ राजा को ऐसा दिशा देना चाहिए जो उसको करना है। प्लीज कभी भी आप मन को ये नहीं कहो क्या नहीं करना है, तो मन वही करेगा जो आप नहीं करना चाहोगे। इसलिए कभी भी मन को ये नहीं कहना कि मन ये नहीं करो। मन को हमेशा ये सिखाना चाहिए, अच्छा यदि ये नहीं करना है तो क्या करना है, तो जो करने वाली बात है वो सिखाना है, जो नहीं करने वाली बात है वो खुद ब खुद चला जाएगा। उसको निकालने में हमको मेहनत नहीं करना चाहिए, लाने में, उसको बनाने में, उसको दिशा में, पटरी पर लगाने के लिए समय चाहिए बस। अब गाड़ी को कहो इस दिशा में नहीं जाओ, इस दिशा में जाओ, अभी किस दिशा में जाना है वो तो बताया नहीं आपने, ये बात हो गई। ऑलवेज टीच द माइंड राइट थिंग्स, डूज एंड डोंट्स, दो चीजें होती है। कभी भी डोंट्स के बारे में आप नहीं सिखाओ, डूज के बारे में सिखाओ, तो डूज करते करते डोंट्स तो खुद ब खुद हो ही जाएगा, दैट्स ऑटोमेटिक, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है अंदर। यदि मैं आपको कहूं आप सोते समय ना बंदर को याद नहीं करना, ये तो अच्छी बात ही है ना, तो बंदर को याद नहीं करना चाहिए, तो क्या होगा, आप सोते समय आपको क्या याद आएगा, आप बताइए। तो मैंने मन को सही सिखाया कि गलत सिखाया, क्या हुआ, आपने तो डरा दिया बिल्कुल मेरे को, ए राजा तो डर गया बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। तो ये हमको नहीं करना चाहिए, तो सही दिखाना, सही दिशा मन को देना चाहिए। अभी कई जन्मों से मन को भटकने दिया है हमने, क्योंकि हमने दिशा ही नहीं बताया, क्या करना है वो भी नहीं बताया, क्या नहीं करना वो भी नहीं बताया, तो मन जब चाहे, जैसा चाहे, जिधर चाहे, चाहे नहीं चाहे, अपने मनमर्जी करता रहा। अब मन के ऊपर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, और वो जो है ना, मन जो है ना, वो प्राइम मिनिस्टर है, जो मंत्रिमंडल में जो मुख्यमंत्री है वो है, वो है कौन है मुख्यमंत्री, हाँ मन या बुद्धि, देखा आप कंफ्यूज हो गए ना, हाँ मन है, ठीक है, पहला मन है, पहला मन है। अच्छा अब हमको ये मन को, अभी आप मान लो घोड़े गाड़ी में जा रहे हैं, या वैसे ही आप कार ही ड्राइव कर रहे हैं, मान लीजिए आप स्कूटर चला रहे हो, आप स्कूटर चला रहे हो या स्कूटर आपको चला रही है, घोड़ा गाड़ी वाले को चला रहा है, गाड़ी वाला घोड़े को चला रहा है, बात हो, ये हो गई ना। अब क्यों घोड़ा, अभी देखते देखते वो घुड़सवार जो होता है ना, वो जैसे जहां जहां घोड़ा जाए वो घोड़े के पीछे उसको जाना पड़ता है, क्यों ऐसा हो जाता है,
किसको कौन चलाना चाहिए? हाँ, तो ऐसा क्यों हो जाता है कि अभी घोड़ा के ऊपर, घोड़े के ऊपर, ये कार मान लीजिए, घोड़ा तो छोड़ो, कार, आप में से कौन कौन कार चलाते हैं? स्कूटर चलाते हैं, स्कूटर बहनों में भी कई हैं जो स्कूटर चलाते हैं। ऐसा क्या है जो स्कूटर पूरा मेरे कंट्रोल में आ जाए, वो जो गाड़ी मेरे कंट्रोल में आ जाए? हैं जी, तो क्या ऐसा होगा जो कई बार वो कंट्रोल से बाहर, अब जब कंट्रोल खत्म हो जाता है, अब जहां गाड़ी जाए ना चाह के भी, मुझे मालूम है अब ये कहाँ गाड़ी जाएगी, फिर भी मेरे पास कोई चारा नहीं होता, जिसको एक्सीडेंट कहते हैं ना। जब जब गाड़ी के ऊपर हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता है, उसको एक्सीडेंट कहते हैं, उसमें दुख है समाया हुआ, नुकसान समाया हुआ है। तो जब जब मुझ आत्मा का जो कंट्रोल अपने मन, बुद्धि, संस्कार, स्वभाव, मूड्स पर नहीं है, तब तब आत्मा राज्यों को नुकसान ही पहुंचता है, दुख ही मिलता है, दर्द ही मिलता है। हाँ जी, ये बात है। तो ऐसे क्यों होता है? अभी आत्मा मन बुद्धि संस्कार के ऊपर वो लगाम, जिसको कहे ना, अभी घोड़े का लगाम हाथ पे है घुड़सवार के, तो घोड़ा ठीक से चलेगा, वो लगाम खींचेगा तो चलेगा। अब मन बुद्धि संस्कार के जो गाड़ी है, मैं आत्मा ड्राइवर या राजा हूं, उसका जो लगाम उसके आत्मा के हाथ में नहीं है, वो छूट गया हुआ है। अब ऐसा क्या है जो आत्मा का लगाम छूट गया? लगाम क्या है? एक है लगाम, दूसरा, जब तक राजा अपने सिंहासन पर नहीं बैठेगा, उसका राज्य तिलक होने वाला राजा अलग है, जो राजा हो गया है उसकी बात मानी जाएगी, उसकी बात मानी जाएगी। जब तक वो ओत, अभी भी प्रेसिडेंट का वो हुआ, जब तक वो ओत नहीं लेते हैं, प्रमाण नहीं स्वीकार करते, तब तक वो सिग्नेचर नहीं करते हैं, तब तक वो मंत्री हो या प्रेसिडेंट हो या राजा हो नहीं बनता। और राजा तो अभिषेक, पट्टाभिषेक होता है ना, मुकुट, राज तिलक लगाएंगे, राज अभिषेक जब तक नहीं होगा तब तक जो है वो राजा नहीं कहलाता है। तो यहाँ जब तक राजा अपने आसन पर नहीं बैठता है, तब तक उसके हाथ में वो लगाम आएगा नहीं। लगाम और आसन दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऑर्डर नहीं कर सकता। अच्छा, और लगाम है आत्मस्थिति, और आसन है, सिंहासन है कौन सा? स्वमान का। जब तक मैं आत्मा अपने स्वमान के आसन पर नहीं बैठती हूं, मेरे कर्म इंद्रियां, मेरे मन बुद्धि मेरी बात नहीं मानेंगे, वो लगाम मेरे हाथ में नहीं होंगे। और स्वमान के आसन पे मैं तब बैठ सकती हूं जब मैं आत्मस्थिति में स्थित होंगी। ये आत्मस्थिति जो है, जिसको बाबा आत्माभिमान कहते हैं, सोल कॉन्शियसनेस कहते हैं, ये आत्माभिमान की स्थिति बहुत सुंदर स्थिति है। ये इस स्थिति, ये आत्माभिमानी स्थिति जो है, आप में से कौन कौन चाय पीते हैं? हाथ खड़ा करें। ओके, अच्छा, अभी चाय बनाते हैं, ठीक है ना, चाय पाउडर डाला, शुगर डाला, और इसमें जो भी आपको मसाला चाहिए वो डाला, दूध डाला, उबला, इसके बाद ऐसे पीते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक काम करते हैं, वो क्या है? हाँ, कितनी भी बढ़िया चीज आप उसमें डालो, उबलने के बाद उसको छानते हैं, छानने के बाद पीते। तो आत्माभिमानी स्थिति वो स्थिति है, मन में कुछ भी डला हो, ये आत्माभिमानी स्थिति, स्वमान की स्थिति, वो सारी बातें छान कर सिर्फ अच्छी 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 ही आएंगे। और वो चीज जो है वो उसकी शक्ति, उसका जो वो है वो शरीर में काम करना शुरू करता है। इसलिए वो आत्माभिमानी स्थिति बहुत सुंदर है। इट वर्क्स लाइक अ फिल्टर, ये फिल्टर का काम करता है वो। अब जब जब हमने गलत डिसीशन लिया, बुद्धि गलत निर्णय लेती है, मन गलत दिशा पर चलता है, हमारे संस्कार बार बार हमको मालूम ऐसा नहीं करना बार बार इंटरफेयर करता है, इसका मतलब हमने फिल्टर नहीं लगाया। अब अच्छे अच्छे सोच सोचते हैं पर कर्म में तो आता ही नहीं है। हम कितने साल से योग लगा रहे हैं, कितने साल से हमने ज्ञान सुन रहे हैं, पर उसका धारणा, जिसको बाबा शब्द कहते धारणा नहीं होता, वो उतरता नहीं है। हम डाल रहे हैं, इलायची भी डाल रहे, अदरक भी डाल रहे, लौंग भी डाल रहे अच्छी अच्छी चीजें चाय में, उबल भी रहा है योग शक्ति में, पर वो धारण नहीं होता, वो शक्ति नहीं, वो उसका टेस्ट नहीं आता। चाय पीते पीते हमको उस चस्का लगा के अरे बड़ा मजा आ गया, वो रिफ्रेशमेंट जो चाय का आनंद आना चाहिए, इसलिए नहीं आता क्योंकि फिल्टर हम नहीं कर पा, वो आता नहीं है, वो इसमें हम फिल्टर करके पोर नहीं करते, डालते नहीं है। एंड सो अच्छे अच्छे सोचते हैं, छोड़ देते हैं, जिसको कहते ख्याली पुलाव, मन ही मन सोच रहे होता कुछ भी नहीं रहा, रोज सोचते हैं, रोज एक दिन सोच सोच कर थक जाते हैं। भैया 20 साल से महात्मा आत्मा आत्मा बोल रहे हैं, शांत स्वरूप आत्मा में, शांत स्वरूप आत्मा, शांत, गुस्सा बहुत आता पहले से अब ज्यादा आता, कहां शांत स्वरूप आत्मा, तो आत्मा तो शांत स्वरूप हुई नहीं है, अब छोटी छोटी बातों पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। क्यों? ज्ञान का पता तो है ना, हम जानते हैं, मानते हैं, अपनाए हैं, ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए हमने सब कुछ छोड़ा हुआ है, पर वो कुछ हो नहीं रहा। वेरी इंपॉर्टेंट आत्मस्थिति। यदि आप ये पूछें, बहुत सारी बातें बताते पुरुषार्थ में, ये करो वो करो वो करो, पर सारी बातें आ जाए जिसमें, वो एकमात्र पुरुषार्थ क्या करे? मेरे हिसाब से एक ही पुरुषार्थ करना चाहिए, आत्मस्थिति में चलते फिरते बैठते उठते बात करते मैं उस्थित हो जाओ, ठहर सको। वो ठहर नहीं गया है, वो ठहराव वाली स्थिति नहीं है हमारी। That's the reason। और जब ये राजा ही हिल रहा है, राजा कर्मेंद्रियों की बात मानता है, कभी मंत्रिमंडल की बातों में आ रहा है, तो वो दुश्मन देखता है, अरे ये राजा तो बड़ा कमजोर है, हाँ जी, तो यही फायदा देख करके दुश्मन के जो राज्य वाले हैं वो आक्रमण करते हैं, जिसको बाबा कहते हैं माया है। माया क्यों आती है? अभी राजा खुश है, सब समृद्ध हैं, हाँ जी, राजा बड़ा गंभीर है, वो बड़ा शक्तिशाली है, राजा के सारे प्रजा बहुत खुश हैं, और राजा में बहुत विश्वास है, एक ऐसा उस पर हमला करके तो दिखा दे, और प्रजा ही वो भगा देंगे। कोई राजा आक्रमण करेगा, मंत्रिमंडल और इसके जो प्रजा है वही दास दासें ही भगा देंगे, क्योंकि राजा इतना पावरफुल है। लेकिन हम, राजा इतना कमजोर है, अब राजा खुद मैदान पर उतर करके युद्ध कर रहा है, तो बाबा कहते हैं हे अर्जुन, वो जो राजा युद्ध करता है मैदान पर, वो कौन है? वो राजा, वो अर्जुन है। अब आप कंफ्यूज्ड है, उलझा हुआ है, मोह में उलझा हुआ है, इच्छाओं में उलझा हुआ है, प्रलोभन में उलझा हुआ है, ये मुख्य तीन बातों में उलझा हुआ है। इस उलझन में उसको बाहर निकलना बड़ा मुश्किल लग रहा, इसलिए बाबा कहते हैं अंतिम पेपर जो होगा वो होगा नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। मोह बहुत दुख देता है, चीजों में, लोगों में, वस्तु में, पुरानी बातों में हम बहुत उसको पकड़ के रखते हैं। मोह माना क्या? उसको पकड़ के रखना, उसको मोह कहते हैं। और जितना पकड़ेंगे उतना दर्द होगा। अब इसको मैं जोर से पकड़ूंगी तो क्या होगा? कितना देर में पकड़ सकती हूँ? हाथ में दर्द तो होगा ना। अब इस दर्द से मुक्ति चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। तो मन से सारी बातें मुझे निकालना पड़ेगा, मोह वस्तु से, मोह लोगों से, मोह बीती बातों से, उसको छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, राजा के गुण क्या क्या होंगे? सबसे पहला राजा उसको कहते हैं जो रॉयल होगा, रॉयल्टी। रॉयल्टी माना उसका चाल। आप में से कोई है जो राजा की तरह यहां चल के दिखा सकते हैं? कौन राजा की तरह चल के दिखाएगा? हाँ, रानी की तरह भी चल के दिखा सकते हैं। कोई आओ, एक भाई आओ या एक बहन आओ जो राजा की तरह चल के दिखाओ। आ जाओ है? क्यों नहीं आता राजा की तरह चलना? ओहो, तो अब इसे नहीं चलेंगे तो सत्युग में कैसे चलेंगे? ओ, तीन तीन आ गए, चलो आ जाओ, आ जाओ, यहां चलो, वहां से यहां चलो। हाँ, राजा जैसे। अभी आप कौन है? सिर्फ राजा की महाराजा? चलो महाराजा, चलो महाराजा, थोड़ा मुस्कुरा दो भैया, मुस्कुरा के चलो। क्या जोरदार चल रहा है। अच्छा, ये महाराजा का नाम क्या है? ओ महाराजा, नाम बताइए। अरे नाम बताओ, कोल्हापुर में। ओके, चलो भाई जोरदार तालियां बजाओ। थैंक यू भैया। राजा के चाल से पता चलता है कि ये राजा है, बोल के आधार पर पता चलता है कि ये राजा है, वो देखने की दृष्टि से पता चलता है ये राजा है, और बोलने के शब्द पर पता चलता है ये राजा है। एक अंधा बाबा था और वो पेड़ के नीचे बैठा था। अंधा था बेचारा, और एक राज्य का छोटा सा टुकड़ा जंगल में जा रहे थे, वो आपस में गुम गए, माना गुम हो गए, रास्ता भटक गए। तो पहला एक को ढूंढ के गया, फिर दूसरा गया, तो अंधा बाबा जो बैठा था उससे पूछा, एक ने पूछा कि अरे अंधे, आपने किसी को देखा यहां से जाते हुए? उसने कहा नहीं। और दूसरा आया और बोला, बाबा आपने देखा यहां से किसी को जाते हुए? उसने कहा, आपके पहले आपका नौकर गया। तो अभी तीसरा आया तो उसने कहा, सूरदास बाबा, आपने यहां से गुजरते हुए किसी के आहट सुनी? तो उसने कहा, जी महाराजन, आपके पहले मंत्री गए और उससे पहले आपका नौकर गया। तो राजा को लगा, आपको कैसा, आपको तो अंधे हैं, आपको कैसा पता कि मैं राजा हूं? इससे पहले नौकर गया, इससे पहले वो गया। कहते, आप बोल से, जिस तरह से आपने मुझे संबोधित किया, जिस तरह से वो नौकर ने, नौकर तो बोले ए अंधे यहां से कोई गए, उसने तो ऐसे संबोधित किया। तो हम किस शब्द, क्या शब्द बोलते हैं, किस भाव से बोलते हैं उससे राजा का पहचान होता। मम्मा कभी भी अपने से छोटे, अपने से बड़े, कभी भी बगैर रिस्पेक्ट के मम्मा कभी बुलाते नहीं थे। अपने से छोटे भी होंगे, उनके भी नाम के साथ जी जरूर लगाती थी, सुनीता जी, रमेश जी, जी लगाती थी। महारानी लक्ष्मी जो बनने वाली हैं, हम तो अभी अपना अभिमान, हमको लगता है ये तो मेरे से छोटे ही तो हैं, हाँ जी मैं तो बड़ा हूं, तो अपना बड़प्पन दिखाने के लिए हम तो पता नहीं कैसे कैसे शब्द को उपयोग करते हैं, क्या क्या सोच लेते हैं। तो सबसे पहले रॉयल्टी, रॉयल्टी माना चाल से पता चलता है कि राजा है। चाल में स्थिरता होगा, निर्भय होगा, हिम्मत होगा, चलने के आप जिस तरह से चलते हैं उससे लोग अंदाजा लगाते हैं, ये इस पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि इसके हर कदम में कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास से बंदा चलता है तो हमारे चाल में आत्मविश्वास दिखाई देगा। ये लौकिक में बताते लोग, ये राजा की निशानी है। राजा बहुत ज्यादा नहीं बोलता है, वो चुन के बोलता है, उनके शब्द का चुनाव बहुत सुंदर होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, राजा कभी भी असंतुष्ट नहीं हो सकता। यदि हमको कंप्लेन करने की आदत है, कमियां देखने की आदत है, हर चीज में कमी क्या है वो देखने की हमें आदत है, वो पसंद नहीं, ये पसंद नहीं, तो हम राजा नहीं बन सकते, क्योंकि राजा संतुष्ट होगा, उसका चाल ऐसा होगा, उसकी आंखें कहीं डूबती नहीं। असंतुष्ट आत्माओं की न बुद्धि भटकती है, न मन भटकता है, उसकी आंखें भी स्थिर नहीं रहती, हमेशा वो ढूंढता रहे, उनके जो नजरें हैं, आंखें हैं, वो ढूंढती रहती है, कभी इधर देखा, कभी उधर देखा, कभी वो देखा, कभी स्थिर नहीं रहेंगे, ये राजा की निशानी नहीं है। वो मांगता नहीं है, बाबा कहते मांगने से मरने वाले क्यों कहते हैं, क्योंकि ये राजा बनने वाले की निशानी नहीं है मांगना। मांगना सिर्फ कोई चीज मांगने की बात नहीं है, ध्यान से सुनेंगे, अपेक्षा रखना भी मांगना ही है। हमने प्यार की अपेक्षा रखा, इज्जत की अपेक्षा रखा, कोई भी प्रकार की अपेक्षा रखते हैं, दैट्स नॉट राजा, राजा नहीं है ये, डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है। और राजा हमेशा अपनी प्रजा की पालना करता है, प्रजा के सुख दुख की जिम्मेदारी राजा पर होता, तो राजा का प्रजा कौन, राजा का कर्मचारी कौन, राजा का मंत्रिमंडल कौन, तो क्या मैं आत्मा राजा अपने मन मंत्री बुद्धि को खुश रखा है? आप अपने मन को खुश रखते हो? कितना दुख देते हैं आप अपने मन को, कितना दुख देते, रहम नहीं आता। बाबा कहते भक्त लोग इतना पुकारते, भक्तों पर आपको रहम नहीं आता। कई बार मैं सोचती हूँ खुद पर तो रहम कर ले पहले, आपके मन पर आपको रहम नहीं आता, दया नहीं आती, बेचारा कितना दुख देते हो, कितना दुखी है वो मन। अरे कल परसों उसने आपको कुछ बोला, 10 दिन पहले कुछ हुआ, 10 साल पहले कुछ हुआ, मैं अभी भी सोच रही हूँ ऐसा क्यों किया उसने, ऐसा बहुत। जब कभी भी हम दुख वाली बात याद करते हैं तो दुख मन में उभर आता है। तो मन, मैंने आपको एक बार डांटा, एक बार दुख दिया, आपने वो बात 40 बार मन में दोहराया, तो आपने आपको, आपने कितना बार दुख दिया, कितना बार दुख दिया, ये 40 बार मन को किसने दुख दिया, किसने दुख दिया? तो मैंने ज्यादा पाप किया कि आपने ज्यादा पाप किया? बताइए। सो प्लीज अपने मन को दुखी मत करो, बहुत दुखी है पहले से, और नहीं दुख, मन को खुश रखा करो। अरे कुछ भी हो जाए, मन को खुश रखो, मन शांत रखो। जब मन शांत होगा तो कर्म इंद्रियां शीतल होगी, ये कनेक्टेड है। जब मंत्री जो है, मैं आत्मा राजा शांत स्थिति में मैं हूं, राजा होगा तो मन शांत हो जाता है, और वो शांति एक कर्म इंद्रियों में फैलती है और कर्म इंद्रिया शीतल हो जाते। कर्म इंद्रिया कोई विकारों के चंचलता में नहीं आते। कर्म इंद्रियों में कोई भी प्रकार के विकार की चंचलता है तो मन शांत नहीं है। आप ऐसा 10 दिन तक भी बैठ करके शांत स्वरूप शांत स्वरूप शांत स्वरूप बोलते रहो, कुछ नहीं होने वाला। मुझे शांत स्थिति बनानी, आत्मस्थिति जो है ही शांत। जब हमने स्थिति नहीं बनाई, आत्मा वो स्वमान में नहीं बैठा, अपनी सीट पर नहीं बैठा, तो मन में शांति आएगी कैसे? मन शांत होंगी नहीं तो इंद्रियां शीतल होंगी कैसे? जब कर्म इंद्रियां शीतल नहीं होंगे तो प्रकृति में प्रकृति खुश कैसे होंगे? प्रकृति तो हमारी दासी है ना। देखो अभी बिन मौसम बरसात, बिन मौसम क्या क्या हो रहा, इतनी गर्मी हो जाना, इतनी ठंड हो जाना, इतना बरसात हो जाना, बाढ़ आ जाना, ये सब क्यों हो रहा? प्रकृति में संतुलन नहीं है। जब आत्मा शांत नहीं होंगे, कर्मेंद्रिया शीतल नहीं होंगे तो प्रकृति संतुलन खोती है। तो जब प्रकृति संतुलन खोती है तो प्रकृति अशांत हो जाती है ना, तो वो भी गुस्से में आ जाती है। प्रकृति के पास आत्मा तो नहीं है, पर हमारे इंसान के आत्मा के वाइब्रेशंस के ऊपर रिएक्ट करने की केमिकल्स है जी। इसलिए हमको राजा का यह भी कर्तव्य बनता कि हमें प्रकृति को भी शांति का वाइब्रेशंस दे। बाबा ये थर्ड संडे का जो नियम बनाया है, सब दुखी आत्माओं को हम शांति का वाइब्रेशंस भेजे, प्रकृति को भी हम शांति का वाइब्रेशंस भेजे, क्योंकि वो हमारे बेचारी दासी है ना, दासी को भी खुश रखना पड़ेगा ना। आपके घर में जो बर्तन मांजने वाली, पोछा लगाने वाली, उसको भी खुश रखना पड़ता है कि नहीं? यदि आप उसको खुश नहीं करते हैं, दिवाली पर साड़ी नहीं देते, उसको लड्डू नहीं देते, वो कहते हैं हम आएंगे नहीं आपके घर काम करने, उसके घर में बहुत देते हैं, हम उसके घर में जाएंगे, तो आप खुद को बर्तन मांजना पड़ेगा हैं जी। आप उसको खुश रखेंगे, वो कहते कोई बात नहीं, हम 2 घंटे एक्स्ट्रा भी काम करके जाएंगे, ऐसा होता है ना। इसका मतलब नहीं उसको ज्यादा पैसा दे दो, अभी जाके मधुबन में क्लास हुआ सर्वेंट्स को खुश रखना है, वो बात नहीं, मैं प्रकृति की बात कर रही हूं, ठीक है। तब जाके ये जब हमारा अंदर का राज्य ये सब व्यवस्थित होगा, संतुलित होगा, अलाइनमेंट में आएंगे, तब अपने आप को स्वराज का तिलक हम लगा सकते हैं। ऐसे राजा भविष्य में विश्व का महाराजन बनेगा। ओम शांति। अब हम सब कौन हैं? बाबा के राजा बच्चे हैं, ठीक है। तो हमेशा ही याद रखना। अब हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।